बहुत ज्ञान होता जा रहा है। मनुष्य चंद्रमा पर पहुंच रहा है, मंगल पर जाने की चेष्टा कर रहा है, ये कर रहा है, और उसको ये पता नहीं कि कौन बनाया। आप इस संसार में कहीं देखिए, किसी नगर में जाइए, किसी घर में आप कहीं पहुंचिए, क्या पहुंचने मात्र से उसकी प्रशंसा होगी? आप किसी घर में जाइए, कहीं मैं यहां पहुंच गया हूं, और आपको पता ही नहीं वो घर किसका है, तुरंत पकड़कर जेल में चले जाए, है ना? ये तो पता होना चाहिए ना कि घर किसका है, वस्तु किसकी है। और कोई सोना देखे, कुछ वस्तु देखे, कहे हम पहुंच गए, हम इकट्ठा कर रहे हैं, कौन बनाया है, किसका है, प्रोप्राइटर कौन है, ये तो जानना चाहिए ना। वो है कृष्ण बलराम। श्रीदाम पहचान, सुदाम पहचान लिया कि आप दोनों जीवों के अग्रज हैं, मतलब जीवों को जन्म दिए हैं, और जो जीव इस संसार में रह रहे हैं, संसार की जो वस्तुएं हैं, भोग से भूमि या आकाश आदि सब आपसे जन्मा है। भूमि से करोड़ों प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न हो रही है, वृक्षों की गिनती नहीं है और फलों की गिनती नहीं है। ये फल सामने हैं आपके ना, ये किसी आदमी से उत्पन्न नहीं हुए हैं, ये वृक्ष से उत्पन्न होकर आ रहे हैं, ये वृक्ष धरती पर खड़े हैं, भूमि पर खड़े हैं। तो भूमि से तो लाखों प्रकार के फल, सब्जी, अनाज सब कुछ उत्पन्न हो रहे हैं, और भूमि के भीतर से सोना, चांदी, लोहा, स्टील, ये सब पैदा हो रहे हैं। कितनी विलक्षण सृष्टि है भगवान की। भगवान जब जीवों को बनाए तो उसके पहले उनको पोषने का उपाय रच लिए। पंच महाभूत पहले उत्पन्न हुए, भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश से पहले हुए, क्योंकि इतने जीव उत्पन्न करेंगे तो खाएंगे कैसे, रहेंगे कैसे, इसलिए उनके समान पहले जुटा करके तब जन्म दिया गया। ऐसा नहीं कि घर से जन्म देने के बाद सोचेंगे कि अब कैसे बच्चे का पालन होगा, क्या होगा। भगवान ऐसे अज्ञ नहीं है, अनंत अनंत कोटि जीवों को 84 लाख जोनियों में रचने से पहले सारा सामान जुटा दिए। तो जो सामान जुटाए, धरती बनाए रहने की जगह, इसको विश्व कहते हैं, और जीवों के समुदाय को जगत कहते हैं, जैसे जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगतान, जीवा नाम नाथ है जगन्नाथ, जीवों के नाथ है, रक्षक है, पोषक है जगन्नाथ। तो विश्व शब्द भी दिया गया इस श्लोक में, और जगत शब्द दिया गया। तो जगत का अर्थ जीव और विश्व का अर्थ सब वस्तु है। इन दोनों के आप परम कारण हैं। तो भगवान ने कहा मैं तो एक जादव हूं, मैं तो यहां जन्म लिया, तो कहा तो अवतीर्ण हो यहां से, क्षमाए च भवाय च, आप इस जगत में अवतीर्ण हुए हैं, अपने धाम से आए हैं, आप दोनों अवतीर्ण हुए हैं अपने अंशों के साथ, अन्य गुणों या जादुओं के साथ आप अवतार लिए हैं। अस्य क्षमाय च भवाय च, इस जगत की रक्षा के लिए, और भव का अर्थ है विकास के लिए, समृद्धि के लिए, जीव सुरक्षित रहे और विकास करें, मतलब आपकी भक्ति करें, सुख से रहें, इसके लिए। क्षेम का अर्थ है रक्षा करना, जैसे योग क्षेमम बहा में हम सब, क्षेम का असुरों के आक्रमण से बचाना। बहुत से लोग हैं संसार में जो भगवान के द्वारा बनाए हुए नियमों की अवहेलना करते हैं, तो उन दुष्टों का दमन करते हैं, रक्षा करते हैं, और मनुष्य समाज में धर्म की स्थापना करते हैं, सबके कर्तव्य बताते हैं, से मनुष्य आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, या और भी कई तरह से आध्यात्मिक दृष्टि से वह समृद्धि को प्राप्त हो, इसको भाव कहते हैं, भवाय, क्षमाय च भवाय च। क्षमाय का अर्थ इस जगत में आदमी अच्छा से रहे और सुख से भगवान का भजन कर, इसको भाव कहते हैं। तो आप दोनों अवतार लिए हैं जगवंश में, इस विश्व में समस्त जीवों के हित के लिए, रक्षा के लिए, और उनके अभ्युदय के लिए। तो भगवान ने कहा कि अभी अभी मेरे द्वारा जो 2 कर्म हुए हैं आपको पता है? तो उसने कहा हाँ पता है, रजत का वध और वायक पर अनुग्रह। रजत का वध भगवान ने किया और दर्जी पर कृपा किया। तो भगवान कहते हैं कि तो इसे तो स्पष्ट लगता है कि मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं हाथ जोड़ करके से वस्त्र मांगा और दूसरे ने हमारे वस्त्र की सिलाई कर दिया तो मैं खुश हो गया, तो मैं तो विषम हूं, ईश्वर तो सम है। एक जगह मैंने याचना किया और नहीं दिया तो उसको मार दिया, और एक जगह सिलाई कर दिया तो बहुत खुश हो गया, उसको कितना कितना दे दिया। ये तो ईश्वर का लक्षण नहीं है। भगवान मानो प्रश्न करते तो कहता है नहीं नहीं आप ईश्वर नहीं। वाम विस्मा दृष्टि शुभ दो चंदात्मा समयो सर्वभूतेषु भजन्तं भजते। भगवान की इन दो लीलाओं पर कमेंट दे रहा है श्रीदान। नहीं वाम विषमा दृष्टि, आप दोनों में विषमा दृष्टि नहीं है कि वह अनुग्रह का पात्र है अनुग्रह का पात्र, आप में ऐसी दृष्टि नहीं है, आप में दृष्टि है ही नहीं। क्यों? क्योंकि समय आप सम है सबके प्रति, समोहम सर्वभूतेषु नमे दस्वस्ति न प्रिय। भगवान श्रीमुख से कहते हैं कि मैं सबके लिए सम हूं, न मेरे लिए कोई स्पेशल द्वेष का पात्र है न कोई प्रिय पात्र है। लेकिन विषमता उधर से होती है, कोई मुझे भजता है मुझसे प्रेम करता है तो मैं भी प्रेम करता हूं, और द्रोह करता है द्रोह करता हूं, द्रोह या फिर नहीं करता हूं, लेकिन उधर से दृष्टि विषम होती है। क्यों भगवान विषम नहीं है सम है? क्योंकि जगदात्मा है, समस्त जीवों के हृदय में अंतर्जामी रूप से आप बसते हो, सभी के हृदय में आप हैं, सबको ज्ञान स्मृति आदि देते रहते हैं। और दूसरी बात है कि आप सुहृद हैं, सबके हृदय में रहते हैं और सबके हितैषी। जैसे माता पिता अपने पुत्रों के लिए सहज हितैषिता करते हैं, हित चाहते हैं, वैसे ही हे प्रभु आप सुहृदम सर्वभूताना समस्त जीवों के सुहृद हैं। आप जिस प्रकार से उस दर्जी के प्रति सौहार्द किए, वास्तव में आपका सौहार्द रजक के प्रति भी है। रजक का वध भगवान ने किया तो वह भगवान के धाम में गया, ये भगवान का अनुग्रह। इसलिए भगवान किसी को तारे या मारे दोनों में कोई भेद नहीं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गली में ऐसे पड़ा हो, हिप्पी बन गया हो, और कोई कृपालु व्यक्ति आ गए और उसको दो चार तमाचा मार करके कहे चलो हमारा फ्लैट पड़ा हुआ है वहां रहो, यहां क्यों रहते, हमारा बंगला है बढ़िया घर है उसमें चलो रहो, मारे तो देखने में गली में लगेगा कि उसको दो चार तमाचा मार रहा है, और मार करके ले जाए अपना घर दे दे फ्री रहने के लिए, तो क्या वह निग्रह कर रहा है? नहीं, अनुग्रह कर रहा है। तो भगवान जिसको मारते हैं तो उसको अपने धाम भेज देते हैं, इस दुख में संसार से मुक्त कर देते हैं, यह भगवान का अनुग्रह निग्रह नहीं। ऐसा लगेगा कृष्ण की इच्छा पूरी नहीं हुई तो धोबी का मस्तक काट दिए मार दिए, ये तो कैसे आदमी है, केवल गाली दे देने से इतना कड़ा दंड दिए। अब कुछ तो ये कह सकते हैं कि भाई वो राजा का वस्त्र था और राजा का सेवक था तो कैसे मांगने से वस्त्र दे दे, लोग तर्क करते थे, भक्त लोग विनोद में तर्क करते थे। हमने कहा ठीक है वो नहीं देता, भाई राजा का सेवक था तो दुर्वचन क्यों बोला, ये तो राजा का नहीं था ना दुर्वचन, उसका था ना। नहीं बोला था। हाँ हाँ वंश परम पहले जन्म का ही भक्त था। हाँ तो इस जन्म में वो कृष्ण के विषय में सुना, कृष्ण की ब्रज लीला और साक्षात तेज देखा, सुंदरता देखा, बहुत काल से भगवान के बारे में सुनता आ रहा था, इस कारण से उसकी भक्ति थी, हमें पहचान गया। अब इसी जन्म में देखिए हम लोग बहुत मनुष्य हैं लेकिन कोई कोई भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान को पहचान लेते, कहते कृष्ण हमारे हैं हमारे प्रभु हैं, कृष्ण को भोग लगा कर खाते हैं, वस्त्र अर्पित करके पहनते हैं, तो कई कई क्रियाएं भगवान को समर्पित करके करते हैं, और कुछ लोग भगवान को बिल्कुल मानते ही नहीं। तो कहते हमको क्या गौर से मतलब है, अगर है भी तो हमको कोई मतलब है, ऐसा कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं वो है ही नहीं, और कुछ कहते हैं है लेकिन निराकार है। तो निराकार से को क्या आसन पर बैठाएंगे और क्या माला पहनाएंगे वो तो भगवान की पूजा न करनी पड़े इसलिए वो मत निकालेंगे, निराकार है। अगर साकार मान लेंगे तब तो आरती करनी पड़ेगी, भोग लगाना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा। निराकार है तो वह सब जगह भजन हो रहा है, वो आलस्यों का सिद्धांत है। राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार। भगवान का भजन सब निराकार चलता है और भोजन निराकार नहीं चलता है। एक आदमी कहा कि भगवान का भजन मन से करना चाहिए, मन से ही होता है। तो मैं कहा और भोजन, भोजन भी किसी किसी दिन मन से किया करो, कुकिंग नहीं करना पड़ेगा, या मन से ही पकाओ, सब करो, रोटी बनाओ, ये बनाओ, सब मन से बनाओ और मन से ही खाओ। तो मन से खा नहीं पाएंगे पर भजन मन से हो जाएगा, क्योंकि करना नहीं है, असली बात ये है, करना नहीं है तो बस सब मन में हो रहा है। मन ही मन एक दिन चले जाओ अपने जॉब पर, ऑफिस में घर कर रहा हो और मन ही मन सोचो कि मैं गया हूं ऑफिस में, मैं कंप्यूटर चला रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो डिसमिस कर देंगे एक सप्ताह, तो मन से कर रहे तो शरीर से करना पड़ता है। तो भगवान की भक्ति मन से, वचन से और तन से करनी होती है। तो कुछ आलसी लोग हो गए हैं, वो कहते हैं अगर उनको नाम जपने के लिए कहिए भगवान का नाम बोलने को, तो कहते नहीं मन से करना चाहिए। और ऐसा भी कहते हैं कि आप गाड़ी से बोल रहे हैं और आपका मन इधर उधर जा रहा है, तब हम तो उत्तर देते हैं कि मन कहीं जाए इसे तो कोई तात्पर्य नहीं है। मान लीजिए कोई पहरेदार है, किसी के यहां पहरा दे रहा है, सिक्योरिटी है, गार्ड है, तो पहरा दे रहा है और पहरेदार द्वार पर खड़ा है, अगर उसका मन अपने घर चला गया है, अपनी पत्नी के पास, बच्चों के पास, लेकिन फिर भी खड़ा है, तो उसको तो वेतन मिलेगा ही। तो मालिक ये नहीं पूछता है तुम्हारा मन कहां गया, कहीं गया था, शरीर खड़ा था ना है कि नहीं, ये शरीर खड़ा है। और नहीं वो किसी दिन कह दे कि मालिक से ग्राहक होकर कह दे कि मैं मन से खड़ा था आज वहां और तन से घर का काम कर रहा था, तब तो उसका अच्छा स्वागत होगा तन से भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना, जप करना, ये सब कई प्रकार के भजन है। लेकिन निराकार जो लोग मानते हैं वो तुमको प्रणाम ही नहीं करना पड़ता है, किधर प्रणाम करे, वो ऊपर है कि नीचे है कि बगल में, प्रणाम कहां करे। एक व्यक्ति को कहा कि हम लोग दंडवत करते हैं, निराकारवादी था, कहा कि हम दंडवत करते हैं। दंडवत का अर्थ किया, कहा कि आप लोग झुकते हैं डंडा की तरह, हम लोग डंडा की तरह खड़े रहते हैं, ये हमारा प्रणाम। तो दंड खड़ा रहता है डंडा ऐसा, उन्होंने कहा तो ये तो दंडवत हुआ ना, प्रणाम तो हुआ नहीं, प्रणाम का अर्थ झुकना है, प्रणाम प्रणाम। नहीं हम खड़ा ऐसे दंडवत करते हैं, तर्क किया, लेकिन उसका तर्क कट गया, नहीं दंडवत आप कर रहे हो ना, प्रणाम कर नहीं रहे हो। संस्कृत में प्रयोग किया है दंडवत प्रणाम या प्रणत, जैसे दंडा खड़ा रहता है लेकिन उसको गिराया जाए तो उतनी ही लंबाई कवर करेगा वो पृथ्वी पर। तो सीधा जितना हमारा शरीर लंबा है उतना हम हो जाए, इसको दंडवत कहते हैं, बिल्कुल फर्श पर दंडवत प्रणाम ऐसे कहते हैं। तो एक भक्त मजाक में एक दिन पूछा कि दंडा को यदि छोड़ दिया जाए तो ठाए से गिरेगा, तो ऐसे गिरना चाहिए क्या हमने कहा कि दंडा तो निर्जीव होता है ना, आप सजीव हैं, तो वो ऐसे ही झुकिए जिससे कि चोट ना लगे सभी बातें कही रही जाती है ना, अपने आप समझ लेना चाहिए। हमारे यहाँ एक कहावत है कि मरद बुझे अरद बुझे मरद सौंस बुझे दरद, आधा कहते ही जो समझ जाए वो है मरद। मर्द जो है वो आधा कहते ही पूरा समझ जाता है, आधी बात कहेगा वो पूरा समझ जाएगा, लेकिन पूरा कहने पर जो समझ हो तो बैल है, बैल भी पूरा कहने पर समझ जाएगा, है ना। आवाज मान लीजिए कोई डायरेक्शन किसी से पूछे कि भाई हम अमुक जगह पर कैसे जाएंगे, डाउन टाउन कैसे जाएंगे, हमको डायरेक्शन दीजिए, तो वो व्यक्ति इतना ही देगा डायरेक्शन कि इस लाइट पर आप बाएं मुड़ जाइएगा, उसके बाद वो लाइट आएगा, ये नहीं कहेगा कि लाल देखना तो रोक देना, हरा देखना तो चला देना, ये तो नहीं कहेगा। तो मर्द है ज्ञानी में समझ रहा है, केवल हल्का सा इंडिकेशन चाहिए, और ये नहीं कहेगा कि स्टॉप देखना तो रुक जाना, इल्ड इल्ड कहते हैं उसको, देखना तो जरा सावधानी से देखते हुए जाना, पीला देखना तो या तो जोर से चलाना नहीं तो रुक देना शुरू। तो उसका आशय ये है कि यदि हम लाल होने से पहले निकल जाए तो ठीक है, लाल बत्ती होने से पहले निकल जाए, नहीं तो ये संभावना हो कि लाल होते होते हम इधर आ जाए, तो पहले ही रोकना चालू करना चाहिए। रिड्यूस स्पीड, कई तरह की बातें होती हैं। मेरे कहने का आशय है कि भक्ति मार्ग में भी ईश्वर को भी समझने में कोई इंडिकेशन भर दिया गया है, सारी बातें बुद्धिमान को नहीं बतानी पड़ती है। जो निराकारवादी है वास्तव में वो आलस्यवादी है, उनको भजन करना नहीं है, इसीलिए ईश्वर को निराकार कहकर के आराम से रहते हैं, काम चलाते हैं, उनका कोई प्रेम नहीं है, क्योंकि ईश्वर कभी निराकार नहीं है। वास्तव में भगवान मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन, तो इस प्रकार से भगवान सबके प्रति सम है, किसी के प्रति विषम नहीं है, वही इस जगत के कारण है सबके। हाँ, भजंतम भजतो रति, प्रेम करने वाले से भगवान प्रेम करते हैं, ये उनका स्वभाव। भजंतम भजमान, भज भजन का अर्थ सेवन, प्रेम करना, यदि भगवान सबके प्रति सम है लेकिन जो उनसे प्रेम करता है तो प्रेम करते हैं। जैसे मान लीजिए एक पिता के कई पुत्र हैं, लेकिन जो पुत्र सब तरह से पिता की सेवा करता है, मानता है, तो पिता सम होते हुए अवश्य उस पुत्र के प्रेम का बदला चुकाता है ना। कि देखा जाए यदि सभी पुत्रों पर उसकी सम दृष्टि है, सबके भोजन, सबके वस्त्र, सबके लिए घर का प्रबंध करता है, लेकिन जो पुत्र पिता का भक्त होता है तो उस पर पिता की विशेष दृष्टि होती ही है, तो वह पिता की ओर से विषमता नहीं है, उधर से विषमता है। एक व्यक्ति पिता को अच्छा समझ रहा है, सेवा कर रहा है, और दूसरा पिता को निग्लेक्ट कर रहा है, तो उधर से विषमता है। जैसे जजाति महाराज थे, उनके चार पुत्रों ने उनको जवानी नहीं दिया, छोटे बेटा ने जवानी दिया, तो फिर जब भूमंडल का त्याग करना हुआ वन में जाते समय, तो राजा जजाति ने अपने छोटे पुत्र को ही राजा बनाया, जदु को नहीं बनाया। जदु को उन्होंने कह दिया तुम लोग राजपूत होते हुए भी क्षत्रिय नहीं कहलाओ, जादव तुम लोग क्षत्रिय हो राजा के कुल में, लेकिन तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी है इसलिए तुम लोग क्षत्रिय नहीं कहलाओ, साफ दे दिया। तो पुत्र तो सभी कहीं थे, लेकिन पिता का अनुग्रह का पात्र हुए पूर्व महाराज, जिस वंश में अर्जुन युधिष्ठिर आदि का जन्म हुआ था। तो इस तरह से भगवान है, भगवान सारी सृष्टि बनाए हैं, सब पर उनकी बराबर दया है, बराबर दृष्टि है, स्नेह है, लेकिन जो उनको मानते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो भगवान का आशीर्वाद उनको ऊपर बरसता है। जैसे कल्प वृक्ष है, जो कल्प वृक्ष की शरण लेता है तो कल्प वृक्ष उसकी इच्छा पूरी करता है, परंतु कल्प वृक्ष सम होता है, यही भगवान का स्वभाव है। इसके बाद कहता है आज्ञा कयत भृत्यम किम हम कर्माणिमान, आप हमें आज्ञा दीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान से और कृष्ण, भगवान जी से कहता है आप दोनों हमें आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं। सब तरह से जीवन की सार्थकता वास्तव में इसी में है कि मनुष्य को ये समझना चाहिए भगवान हमसे क्या कराना चाहते हैं, उनकी आज्ञा का मैं पालन करूं। तो सुदाम पूछ रहा है कि हम क्या आपकी सेवा करें, हमारे किस व्यवहार से आप प्रसन्न होंगे, हमें आज्ञा दीजिए। पुंसो अति अनुग्रह यह सब भवद्भिः जब नियुज्यते, यदि आप किसी व्यक्ति को किसी कार्य में लगा लें तो यही आपका जीव पर सबसे बड़ा अनुग्रह होता है, अति अनुग्रह। यही पुत्र का धर्म है, शिष्य का धर्म है कि वह अपने पिता से ऐसा कहे कि मैं आपका क्या प्रयोग करूं। ये नहीं कि पिताजी चाहते हैं कि बेटा कुछ कहूं, लेकिन हिम्मत नहीं होती है कि कुछ कहे। जवाब दे देगा, पालन नहीं करेगा। तैयार रहना चाहिए, जैसे अर्जुन ने भगवान से कहा करिष्य वचनंतः, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो आज्ञा बहुत कठोर थी भगवान की, लड़ो मारो काटो, और अर्जुन को करना पड़ा, वो किए प्रसन्नता से बात। इस तरह से श्रीदान कहता है जब कोई व्यक्ति आपकी आज्ञा का पालन करता है और आप आज्ञा देते हैं कि यह करो, तो यही जीव पर आपका अनुग्रह है कि आप आज्ञा दें, आपकी इच्छा का पालन हो। तो इस प्रकार से जब कहा उसने, तो भगवान संकेत किए, कहे नहीं खुल करके, उन्होंने संकेत किया, यह कहा होगा कि आप मालाकार हैं, हमको कुछ स्पेशल माला चाहिए। तब सुदाम के परिवार के लोग, उसकी स्त्री, खूब सुंदर माला बनाना चालू किए कृष्ण बलराम के लिए और गोपों के लिए। पहले तो जैसा बना था वैसे ही पहना दिए थे, लेकिन भगवान से जब उन्होंने कहा कि हम आपकी क्या सेवा करें, तो भगवान ने कहा हम माला चाहते हैं। तो विरचिता माला, खूब सुंदर ढंग से बनाई हुई माला उसने दिया भगवान को और बलराम जी को। सस्ते सुगंध कुसुमई, प्रशस्त मतलब श्रेष्ठ कोटि के पुष्पों से बनाई गई, सुगंधित पुष्पों से, यहां जैसे निर्गंध पुष्प से नहीं, खूब सुगंध जिसमें थे ऐसे पुष्पों से माला बनाया है। भारत में निर्गंध पुष्प प्राय नहीं होते, सब सुगंधित होते, और इधर तो शायद ही किसी में सुगंध है ना, इधर भी रहती है सुगंध कम रहती है। सुगंधय पुष्पय कुसुमय विरचिता माला, विरचिता का अर्थ विशेषेण रचिता, बीच बीच में भिन्न भिन्न ढंग के फूल लगाते थे एक निश्चित दूरी पर, कई वर्ण के पुष्प से बनी हुई माला भगवान को पहनाए और बलराम जी को पहनाए। देखिए भगवान से पूछा गया कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, तो भगवान उस व्यक्ति की स्थिति के अनुसार सेवा मांगे। भगवान ने कहा पुष्प चाहिए, ऐसा नहीं कह दिया कि हमको करोड़ों रुपए का रत्न दीजिए या माला दीजिए, वैसा माला। भगवान किसी की सेवा की शक्ति को देख करके ही कहते हैं कि ये सेवा करो। इतना विवेक मनुष्य में रहना चाहिए कि कोई हमारी सेवा करने के लिए कहे तो समझ लेना चाहिए कि कितनी इसकी शक्ति है, कौन सेवा प्रसन्नता से कर सकता है। और नहीं मान लीजिए आपको कोई कहे कि हम आपकी कुछ सेवा करना चाहते हैं, आप कहिए, और उस सेवा करना चाहता है $100 से, उसे इतना मांग लीजिए बाद में $1000 के, अब नाम भी मांग ले कि इससे भेंट हो मुझे। फिर ऐसा है संसार में, ऐसा होता है। तो देखना चाहिए क्या इनकी स्थिति है और कितना दे करके प्रसन्न रहेंगे, इनको सुख होगा। भगवान पुष्प की माला मांगे, रत्न माला नहीं मांगे। पुष्प माला में क्या लगता है, वृंदावन में आए देखिए पुष्प माला, खूब महंगी माला होगी तो 15 रुपए की, 20 रुपए की, खूब महंगी, खूब अच्छी, और नहीं तो ऐसे 5 रुपया 7 रुपया में मालक अच्छी मिल जाती है। भगवान प्रसन्न थे, उनको मांगने के लिए कहा गया कि पता हमको माला चाहिए। भगवान मिथ्या चीज क्यों, व्यर्थ की बात क्यों मांगे? और कपड़े की जरूरत है कपड़ा मांगे, और सिलाई की जरूरत है सिलाई करवा लिए, अब माला पहन ली व्यर्थ। तब कोई कहेगी और सुदामा से कहे कि हमको एक रूम है हम दे दो, हम मथुरा में आए हैं, हमारा घर नहीं है, यहाँ रहेंगे, अटैच्ड बाथरूम कोई हो रूम तो दे। भगवान ऐसा नहीं कहे, जो तत्काल आवश्यक वस्तु है उसको भगवान कहा। तो उस माला को बना कर को दिया, और सब लोगों को माला बनाई गई स्पेशल, बलराम जी को और अन्य सबको। ताभिस्वलंकृत प्रीत कृष्ण राम सहानुभव प्रणताय प्रपन्नाय दगतुर्वरदौ बलान। दोनों भाइयों का उसने अलंकार किया चंदन आदि से, माला से, और कृष्ण बलराम को एक एक माला नहीं कई कई प्रकार की माला पहनाई गई। ये भगवान माला मांग दिए तो उसका माला बनाना सार्थक हो गया, जीवन धन्य हो गया। भगवान की बहुत सी सेवाएं हैं, लेकिन उसमें माला एक बहुत सेवा है, माला पहनते ही। मनुष्य माला पहनना नहीं जानते हैं, हम लोग तो देखते हैं कितने लोगों को माला पहनाई है, किसी लीडर को नेता को तो माला पहनाते ही निकाल कर हाथ में रख लेता है, देखे हैं माला पहनते नहीं है लोग। यहां तक भगवान की प्रसादी माला भी पहनाई है तो निकाल कर तुरंत हाथ में रख लेते हैं। ये कौन सा ढंग है माला हाथ में रखने के लिए, पहनने के लिए? भगवान की प्रसादी माला को बड़े गर्व से पहनना चाहिए, मैं भगवान का दास हूं, यह भगवान का प्रसाद है, यही मेरे जीवन की शोभा है। सीखना चाहिए, लज्जा नहीं करनी चाहिए, भगवान की प्रसादी माला पहनने में कोई हर्ज नहीं। हाँ, डायरेक्ट खरीद करके नहीं पहनना चाहिए, वो गलती है। शास्त्र में लिखा गया है कि व्यक्ति को अपने से माला नहीं पहनना चाहिए कभी भी, बाजार से खरीदे और लगा दिए माला, स्वयं भगवान हो गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान की प्रसादी माला तो आवाज से पहनना चाहिए। हम लोग तो कभी कभी रात में भी माला लगा करके सोते हैं, भगवान का प्रसाद है, भगवान के देह पर रहा है तो रात भरे बहे से भले ठंडा लगे लेकिन कुछ भी ऐसे सौभाग्य है। हाँ, सब तरह से शुक्र है, भगवान का प्रसाद है। इंद्र ने भगवान की माला को स्वीकार नहीं किया तो दुर्वासा ने साप दे दिया कि तुम निर्धन हो जाओ, ये कथा है भागवत। तो भगवान माला लिए, बड़े प्रसन्न हुए दोनों भाई और उन्होंने वर दिया। तो श्रीदान से जब श्रीदान ने कहा कि हम आपकी क्या सेवा करें, बोलिए, तो भगवान ने कहा माला चाहिए, और उसने माला दिया, श्रृंगार किया, खिलाया पिलाया सभी को, तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए। और दोनों भाई कहते हैं आप वर मांगिए, क्या चाहिए आपको? तो उसने वर क्या मांगा, इति तस्मय शोक बब्रे अचलाम भक्ति तस्मी मेरा खिला। उसने वर क्या मांगा, भगवान ने अचला भक्ति का वर, जो कभी चलाए मान न हो, अचल अखंड भक्ति मांगा। आप दोनों के चरण कमल में हमारा जन्म जन्म में प्रेम बढ़ता जाए, बस यही वर चाहिए और कुछ नहीं मांगा। लेकिन जाने से पहले भगवान उसको वर दिया, ऐसे 3 वर मांगा भगवान से, भगवान में अचल भक्ति और भगवान के भक्तों के साथ मित्रता और समस्त जीवों पर परम दया, 3 वर मांगे। सोपि बद्रे अचलाम भक्ति तस्मिन् एव अखिलात्मनि तद भक्ते सुच सौहार्दम भूतेश च दयां परा। ये है जीव का धाम, भगवान में भक्ति हो, भगवान के भक्तों से प्रेम हो और सभी जीवों पर परम दया। यही है जीव ठीक स्थिति। चैतन्य महाप्रभु से, चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा था, कृष्णे भक्ति जीवे दया वैष्णवस्य मन, यह छाड़ी धर्म नहीं सुना सनातन। कृष्ण में भक्ति हो, प्रेम हो, और उनके भक्तों से संबंध हो सख्य, और सभी जीवों पर दया हो, इसको छोड़कर तो कोई दूसरा धर्म नहीं, यही धर्म। तो इन तीन वरों को उसने मांगा, भगवान ने कहा ठीक है। इति तस्मय वरम दत्ता, उसको वर दिया भगवान ने, लेकिन इसके बाद और अपनी ओर से कहा वर दिया, श्रीयम चान्वय वर्धिनी, श्री दिया, धन दिया जो अन्वय वर्धिनी, वंश वंश में धन बढ़ता जाए ऐसा धन दिया, कि उसको जो धन दिया भगवान ने उसके बेटा को उससे ज्यादा होगा, फिर उसके नाती को उससे ज्यादा होगा, बढ़ता बढ़ने वाला धन भगवान ने दिया। एक व्यक्ति जब भगवान को इस तरह से समर्पण करता है, भक्ति करता है, तो उसके वंश में जन्म लेने वाला कभी गरीब नहीं रह सकता। और प्रत्येक गृहस्थ को अपने से भी अधिक चिंता होती है अपने पुत्र के लिए, है ना, ये सब देखा गया है। कभी कभी आदमी सोचता है कि अभी तो ठीक चल रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा, ये बच्चे हैं इनका क्या होगा कैसे। यदि इस चिंता से मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान उन बच्चों को ही दुख नहीं होने देंगे, उनको जितनी जरूरत है वो देंगे। तो अन्वय वर्धिनी श्रीयम ददौ, वंश परंपरा से बढ़ने वाला धन भगवान ने दिया, कोई चिंता की बात नहीं है। तो जितना अपेक्षित धन है, जितना चाहिए धन, कभी भी ऋण कर्जा नहीं होगा, और बच्चे कभी सफर नहीं करेंगे धन के बिना, या उनके जो बच्चे होंगे उनके बच्चे होंगे, वंश परंपरा से धन बढ़ता जाएगा, ऐसा भगवान ने कहा कि वंश परंपरा से बढ़ने वाला तुमको धन मिले और बल और पूर्ण स्वस्थ शरीर रहेगा और आयु बहुत लंबी आयु दिया, बलम आयु जस्सा, बल दिया भगवान ने पूर्ण स्वास्थ्य और बहुत दिन तक जीने का बल दिया, तथा जस्सा, जस्सा का अर्थ है कीर्ति, तुम बड़ा बड़ा काम करोगे, तुम्हारा समाज में जस रहेगा, नाम रहेगा, कांति, कांति का अर्थ सुंदरता, केवल ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा जीवन जिए और बेड पर गिर करके जिए, ऐसा नहीं, कांति मतलब शरीर बिल्कुल युवक रहेगा जब तक जियोगे तब तक, और इतना बल दे करके दोनों भाई निकल गए घर से। जब निकलो तो वो आया द्वार पर छोड़ने के लिए और कहा कि मथुरा में यदि रहिएगा तो हमारे घर आते रहिएगा कभी कभी, बीच बीच में भगवान ने कहा ठीक है, और फिर वे निकल करके चले मथुरा के राजपथ पर चल रहे। ये भगवान की तीन लीलाएं आज मैं कहा, श्रीदाम का उद्धार, श्रीदाम पर कृपा, दर्जी पर कृपा और रजत वध, तीनों लीलाओं में भगवान के स्वभाव का प्रकाशन हो रहा है। वास्तव में यह गृहस्थ आश्रम एक नरक स्थान है, आप लोग रंज मत होइएगा, मैं इसे बहुत कठोर बोल रहा हूं, लेकिन यह गृहस्थ आश्रम इस विषय में धन्य है। यदि घर में साधु का आगमन हो तब गृहस्थी बंधन कारक नहीं, ये कहीं धन है गृहस्थों का, वो है अपने घर में साधु का आगमन, उसके सेवा का एक अवसर। यहाँ पर एक भक्त ने टीका में लिखा है, मैं उसे पढ़ रहा हूं। सुदाम कहता है भगवान से, गार्हस्थ्यम मम धन्य मद्य फलिता सद्ब्राह्मण उक्ता शिषा, हे कृष्ण आपके हमारे घर में आगमन से हमारा गार्हस्थ धन्य हो गया, ब्राह्मणों ने जो हमको आशीर्वाद दिया था वो आज फलीभूत हो गया। ब्राह्मणों का आशीर्वाद सफल हुआ, पितरों सेवन मत अदम्भ विहितम, और यह निश्चित हो गया कि मैंने पितरों की जो सेवा किया था वो ठीक किया था, आपके आगमन से पता चला, और हमने जो यज्ञ किया था सही किया था। मन्ने चाद कुलाग्नि गत मलम, मैं मानता हूं कि मेरे कुल का मल चला गया, इसकी अशुद्धि चली गई और यह पुण्यास्पद हो गया, जो कि श्रीपति आप हमारे घर में आए, हमने शुद्ध दान दिया था, हमने तप किया था, उन सबका फल यह हुआ कि आप हमारे घर में आए। तब भागवत के टीकाकार एक बात कहते हैं, श्रीदान के मुख से कहलवा रहे हैं, स्त्री चेत स्या मनोरमा यदि तथा पुत्रो नुच्चे नान हुआ, यदि किसी गृहस्थ के घर में पत्नी मनोरमा नहीं है, मनोरमा मतलब मन के अनुकूल नहीं है, कर्कशा बोलने वाली है, चाहे ठीक से सेवा नहीं करती है, ऐसी अगर स्त्री हो घर में और पुत्र भी अनुगामी न हो पिता का, और घर गृहस्थी चलाने के लिए पर्याप्त धन न हो और हमेशा घर चलाने की चिंता बनी रहती हो, तो ऐसे क्लेश में गृहस्थ आश्रम में कौन रहेगा, यहां तक कौन उसका वर्णन करेगा, तो दुखद। वास्तव में मैं नरक इसलिए कहा, नरक नहीं है गृहस्थ आश्रम, लेकिन बहुत ही विकट संकट का स्थान, कब जबकि स्त्री अनुकूल नहीं है, स्त्री मधुर बोलने वाली न हो और पुत्र अनुगामी न हो, पुत्र भी दूसरे मत वाला है, स्त्री भी भिन्न मत वाली है, और धन भी नहीं है, लेकिन यदि साधु के चरण कमल पधारते हैं घर में, यदि साधुओं में पद्मागम, साधु को कहा गया है कल्प वृक्ष जैसा, यहां यदि साधु का आगमन घर में न हो और स्त्री अनुकूल नहीं है, कर्कशा है, पुत्र अनुगामी नहीं है, धन भी नहीं है, तो ऐसे गृहस्थ आश्रम में कौन रहेगा, कौन उसकी उसका नाम भी लेगा, तो बहुत दुखद गृहस्थ आश्रम। परंतु घर में कुछ भी नहीं है पर भगवान के भक्त का यदि आगमन हो घर में तो बहुत बड़ा धन है। उससे दाम कह रहा है, चाणक पंडित का एक श्लोक है कि माता जस गृहे नास्ति और भार्या चापे भाषी अरण्यम तेन गंतव्य जथा गृहम जथारण्यम तथा गृह, जिसके घर में अपनी माँ नहीं है, जो चलिए माँ नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर ये कारण कि माँ भी नहीं है और जो घर में पत्नी आई है वो भी कर्कशा है, वो भी अप्रिय वादिनी है, पति से प्रेम से नहीं बोलती है, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि घर छोड़कर वन में चला जाए, क्योंकि अब वन में और घर में कोई अंतर नहीं जब स्त्री भी प्रेम से नहीं बोलती है और माँ है ही नहीं तो क्या घर में रहना, वन में रहना चाहिए। एक बार एक भक्त ने पूछा था कि जब वन में और घर में अंतर नहीं रहा तो वन में क्यों जाने चाहिए इसका अर्थ है कि वन में वो शांति से रहेगा, घर में अशांत रहेगा, उससे अच्छा है वन में चला जाए, क्योंकि वन में भी कोई भोजन पका कर देने वाली नहीं है और कोई बात करने वाला अच्छा से नहीं, लेकिन कम से कम चिंता तो नहीं रहेगी ना, भगवान का भजन करेंगे वन में, निर्जल में नहाएंगे, कंदमूल खाएंगे, जीवन धन्य होगा, ये रात दिन की इस कलह में कौन पड़ा रहा है। इसके द्वारा यह शिक्षा लेनी चाहिए कि स्त्री का धर्म है कि वो पति से बहुत प्रेम से बोले, ये तो ट्रेनिंग होनी चाहिए लड़कियों को, वास्तव में कैसे पति की सेवा करनी चाहिए, तो कुछ ऐसे वंश होते हैं जिसमें ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं होती है, लड़कियां अपने आप सीख लेती हैं, वंश परंपरा से देखती है कि हमारी माँ अपने पति की, हमारे पिताजी की किस तरह सेवा करती है, तो जहां जाती है तो वो संस्कार इनहेरिट करती है और वो अपने आप करती है, और किसी में ऐसा ना हो तो ट्रेनिंग देना चाहिए, सिखाना चाहिए। कालिदास जी ने लिखा है कविता में, कोई लड़की विदा हो रही है अपने पति के घर जा रही है, तो उसकी माँ सिखा रही है कि बेटी ससुराल जा रही हो तो ये कार्य करना है, पति कहीं से आते हो ऑफिस से या कहीं से तो तुम उनके पैर की आहट पाते ही खड़ी हो जाना रिसीव करने के लिए घर पर। ऐसा नहीं कि सोफा सेट पर पत्नी जी बैठी हैं और पति आकर पानी ढाल कर पी रहे हैं, कर रहे हैं, तो पत्नी किस लिए हुई है? ये वास्तव में विचारणीय बात है। तुरंत उठ जाना चाहिए, स्वागत करना चाहिए और पानी देना। अभ्युत्थान उपागते गृहपतव, अभ्युत्थान कहते हैं उसको, प्रतिदिन, बल्कि दिन में कई बार पति को रिसीव किया जा सकता है। सो आकर के बाहर के मान लीजिए घंटी बजावे लगी रहती बेल बजावे तो उठ जाता था खड़ा। ऐसे खोलने के लिए अथवा मान लीजिए वे चाबी लिए हो की लिए हो खोले तो फिर भी खड़ा हो जाता है। तो खड़ा हो जाता और उनके लिए आसन लगाना, आसन पहले से भी हो तो देख लेना, झाड़ देना है कुछ की आकर बैठेंगे, ऐसा करना चाहिए। धीरे धीरे ये सभ्यता लुप्त तो होती जा रही है, लेकिन कितनी उपाध्याय है। तद भाषणे नम्रता, पति से बोले तो नम्र भाव से बोले, उदंड और एक शासक की तरह नहीं, डांटते हुए ना बोले, क्योंकि पत्नी ही घर में एक ऐसा व्यक्ति है जो पति को सुखी कर सकती है। पति गया है बाहर, पता नहीं रास्ते में उसको किसी ने गाली दिया होगा, किसी ने ऑफिस में कुछ कहा होगा, थका मांदा, एक तो भूख लगी रहती है और कहीं मान अपमान हुआ है, तो घर में आकर के पत्नी जब उसका स्वागत करती है तो सब दुख को भूल जाता है। वो तो कहता है ईस्ट और वेस्ट होम इज द बेस्ट। ये ठीक है। और आदमी अपने घर पहुंच करके सुख का अनुभव करता है, लेकिन घर का मतलब दीवार थोड़े हुआ। घर में पहुंचते ही पत्नी स्वागत करती है, बच्चा प्रेम से बोलता है, वह आ जाता है और रहता है, ये सुख है वास्तव। नहीं तो केवल घर हो और अकेले आदमी आगे खाए पकाए तो भूत भी ऐसा करता है। घर का सुख है पत्नी की अनुकूलता, बच्चे की अनुकूलता, ये सुख है। लेकिन प्रायः देखा जाता है कि घरों में ये चीज सुलभ नहीं होता है, पर यहां बताया जा रहा है कि यदि भगवान घर में आवे, भगवान के दास साधु जन घर में आवे तो ये भाग्योदय होता है गृहस्थ का, भाग्योदय होता है। मालाकार कह रहा है सुधा, तो इस प्रकार भगवान सेवा के भावना के अनुसार, भक्ति के अनुसार तीनों को तीन फल दिए, बायक को भी दिए, लेकिन वहां पर बायक है सेवा किया लेकिन उसने माना नहीं कि मैं आपकी और क्या सेवा करूं, तो भक्ति का वरदान वहां नहीं आ पाया है। ऐसे तो धन भगवान ने बहुत दिया, लेकिन सुदाम को धन भी दिया, वंश परंपरा से बढ़ने वाला धन और सब कुछ दिया, और भक्ति दिया, सब कुछ दिया। अब तो भगवान को कपड़ा हो गया, माला हो गई, अब चाहिए चंदन, तो रास्ते में एक स्त्री मिल गई चंदन लेकर जाते। हाँ सैरन भी कुब्ज, उस कथा को मैं कॉल करूंगा। हरे कृष्ण जय श्री। Thank you. said
in comparison to
Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Sarasvat Deve Gauravani Prasarine Nirvishesha Sanyavadi Paschadesha Tarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvise Namaha Tapta Kanchana Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vāñcā kalpatarubhyascha kripa sindhubhyayevacha patitānām pāvanibhyo vaiṣṇavebhyo namo namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadādhar Śrīvāśādi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dur asan ho gaya Atha Brajan Rajapathe Namadhavah Striyam Grihitang Vilepa Bhajanam Vilokya kubjam juvatim varananam papracchajantim prahasan rasa pradaha Ab Srila Sukhdev Goswami Sairandri ke uddhar ki charcha kar rahe hain श्री भगवान अपने भाई श्री बलराम जी और गोपों के साथ सुदाम के घर से निकलकर राजपथ पर चलने लगे अथ ब्रजन राजपथेन माधव माधव राजपथेन ब्रजन राजपथ पर चलने लगे राजपथ का अर्थ है मुख्य पथ यह राजपथ का अर्थ हाईवे नहीं है मुख्य पथ राजपथ तो उस पर माधव चल रहे थे माधव का अर्थ है लक्ष्मी के पति भव का अर्थ होता है पति और मां लक्ष्मी लक्ष्मी के पति भगवान चल रहे अथ ब्रजन राजपथे न राजपथ पर चलते हुए अपने सखाओं के साथ बलराम जी के साथ भगवान आगे बढ़ते जा रहे थे तो उन्होंने एक युवती को देखा युवती कथम भूतम युवती गृहितांग विलेप भाजनाम वह अंग विलेप के बर्तन को लिए हुए थी शैरंद्री जिसे कुब्जा भी कहा जाता था वो एक बड़ा बर्तन भी थी और उसमें छोटी छोटी कटोरियां रखी थी बहुत सी उसमें बहुत से अंगराग पीस करके रखी थी यह भी एक कला है अंगराग पीसने की। अंगराग जो शरीर में चंदन केसर कस्तूरी आदि लगाया जाता है अगुरु, तो इसको अंगराग कहते हैं। बहुत ही सुगंधित और शीतलता देने वाला, शरीर को सुंदर बनाने वाला राग होता है, पेस्ट, इसे अंगराग कहते हैं। तो वह कुब्जा कंस के लिए अंगराग बनाती थी, बहुत ही सुंदर। किसी भी वस्तु के निर्माण में उसकी कला जानना बहुत आवश्यक है। एक बार की घटना है, ये तो बाहरी बात हो रही है लेकिन मैं कला की बात कर रहा हूं। जब ताजमहल बन रहा था तो एक मिस्त्री मसाला बना रहा था बहुत देर तक, तो जो कंस्ट्रक्शन का निर्माण का हेड था, प्रधान था, वो कहा क्या कर रहे हैं, कितने घंटों से मसाला बना रहे हैं। तो उसको कुछ बोल दिया, तब तक वो उठा करके मसाला ऐसे मारा उस पर नहीं लगा, वो लग गया दीवाल पर लग गया और उसको कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ देर के बाद छुड़ाने लगे तो छूट ही नहीं रहा था, इतना कड़ा हो गया वज्र जैसे, आज तक वो मसाला लगा हुआ है आज तक मसाला लगा हुआ है। तब जो हेड था कहा तुमने बहुत अच्छा मसाला बनाया। तो बहुत देर तक वो मसाला बना रहा था। वो कलाकार था। इस तरह से अंगराग पीसने में कुब्जा को कंस ने पसंद किया था, बहुत उत्तम श्रेणी का अंगराग बना दिया। गृहितांग विलेप भाजनाम, और एक बड़े बर्तन में जिसे झोली जैसा होता है और उसमें कई कटोरियां थी, वो तो लेकर के जा रहे थे। युवतीम बराननाम, वह युवती थी और मुख बहुत सुंदर था उसका। सुखदेव गोस्वामी उसका ध्यान कर रहे हैं, शैरंद्री का युवती थी और वरान नाम, वर का अर्थ श्रेष्ठ, श्रेष्ठ आनना, उसका आनंद बहुत श्रेष्ठ था, अर्थात परम सुंदर मुख था और जानती वो जा रही थी। तब तक विलोक्य माधव ने देखा, श्री कृष्ण ने देखा, तो हजारों हजारों लोग राजपथ पर चल रहे थे, इधर से चल रहे थे, उधर से आ रहे थे, लेकिन भगवान की किसी पर दृष्टि नहीं पड़ी, एक कुंवारी स्त्री पर दृष्टि पड़ी इस पर श्रीमद् भागवत के टीकाकार श्री हरिश्वरी जी कहते हैं कि ब्रजन नृप पथे प्रजा धृति जनई निजय राश्रितो द्विशतपुर गतो प्यरि प्रकृत दत्त चित्तो प्यसौ न चालम अतिलंघने कुटिल चेटिकाया अपि इत्यभूदिह ततो न किम स्फुटम अलंघ दुर्गम स्त्रियः। भगवान ने मथुरा के राजपथ पर चल रहे हैं जहां सहस्रों लोग हैं और वह नगर कौन है, अपने शत्रु का नगर, अपने शत्रु के नगर में भगवान चल रहे हैं और साथ में अपने सखा हैं, बड़े भाई हैं, सहस्त्रों लोग और भी हैं। और यह भी भगवान को मालूम है कि कंस कितना क्रूर है, तो उसके स्वभाव में भी भगवान चित्त दिए जानते थे, परंतु फिर भी वे उस कुटिल दासी से पार नहीं कर पाए, वहां अटक गए तो इससे सिद्ध क्या सिद्ध नहीं हो गया कि इस संसार में मनुष्य सब कुछ पार कर सकता है लेकिन स्त्री का मोह पार करना बहुत कठिन है? क्या इससे सिद्ध नहीं हो गया? भगवान वहां आए, आगे रुक गए, वो भी कुटिल चेटिका आया, चेटिका माने दासी, वो कुटिल कुबड़ी दासी, और उसमें अटक गए भगवान। भगवान एक शिक्षा दे रहे हैं कि संसार में स्त्रियों से पार पाना बहुत कठिन है। बड़े बड़े साधक, विरक्त, महान पुरुष गिर जाते हैं स्त्रियों में। भगवान और कहीं नहीं अटक रहे और आकर के स्त्री से, तो क्या स्पष्ट नहीं हो गया? इस संसार में धन, प्रतिष्ठा और स्त्री, ये तीन महाबाधक हैं भगवान को प्राप्त करने में। उसमें भी कभी कभी धन की ममता से पार हो जाता है आदमी, लेकिन इस संसार में दुर्लभ हैं स्त्रियां। स्त्री की माया से पार हो गया तो पार ही हो गया, ये अर्थ है। भगवान लीलाओं द्वारा कुछ बातों का संकेत करते हैं। तो भगवान ने देखा उस युवती कुब्जा को। कुब्जा का अर्थ होता है जिसके पीठ पर कुबर था। कुब्जा कौन है, इस विषय में आचार्यों के मंतव्य हैं। कुब्जा पृथ्वी देवी है और असुरों का जो भार है वही उसके पीठ पर कुबर के रूप में दिखाई पड़ रहे थे। और कुछ महानुभावों का कहना है कि वह मंथरा थी, पृथ्वी देवी के भीतर ही आई थी, जिसने भगवान को वन में जाने के लिए बाध्य किया था, कैकेयी को पढ़ा करके समझा करके राजी कर दिया। वो अभी कुबरी थी, इसलिए संगति बैठाते हैं। जो भी हो, तो भगवान ने देखा और अपने सखाओं के साथ ही वे आ गए उसके सामने। उधर से आ रही थी, जानती उधर से आ रही थी, जिधर भगवान जा रहे थे उधर से आ रहे थे, तो उसके सामने आकर खड़े हो गए। परम सुंदर भगवान, जिनको सहस्रों लाखों लोग देख रहे हैं, वे भगवान उस स्त्री को देखने लगे और देख करके हंसे हंसे। तो किसी पर देख करके हंसना ये बहुत बुरा है, इधर तो लोग सूख कर देंगे, है ना? लेकिन भगवान एकदम उन्मुक्त हंसे, और भी स्त्री को देख करके रसप्रद। भगवान समस्त रसों के दाता है, दिव्य सुख के दाता है। रस का अर्थ है सुख। भगवान उसको भी कुछ रस देना चाहते थे। जो रसप्रद है सबको सब रस देते हैं, भुक्ति, मुक्ति, भक्ति सब देते हैं, वही भगवान आज चंदन रस के लिए लुब्ध हो रहे हैं। तो भगवान को हंसी आई और हंस करके उन्होंने पप्रच्छ पूछा। इस पर हरीश्वरी जी भाव लिखते हैं, भगवान क्यों हंसे? देखिए, भक्तों की यह भावना है, उत्प्रेक्षा है। कृष्ण क्यों हंसे? भगवान ने सोचा, वामनोहम यम कुब्जा योगो अयम अधुनावयो सर्वलोका भूतकर स्यादिति प्राहसद हरि। भगवान को तुरंत ही याद आ गई कि मैं भी वामन हूं, मैं भी एक बार वामन बना था, और यह भी कुब्जा, मैं वामन हूं और यह कुब्जा है, तो हम दोनों का संयोग लोक में बड़ा अद्भुत लगेगा, लोग बड़ा अच्छा समझेंगे कि भाई ठीक जोड़ी मिल गई, ठीक दुल्हन के लिए दुल्हा मिल गया। तो भगवान शायद ये सोच करके हंसे कि मैं वामन हूं और यह भी कुब्जा है, तो ये संयोग बन गया। तो दूसरा हंसी का कारण बताते हैं,
श्लाघ्यम अप्सरसाम रूपम गात्रम तो कुटिलाकृति अहो विधात्री चातुर्जम इद्रिदित्यहसद हरहि। भगवान ने विचार किया कि देखो विधाता की रचना, इसका रूप तो अप्सराओं से भी अधिक सुंदर है, अप्सराएं भी इसके रूप की श्लाघा करेंगी, प्रशंसा करेंगी, लेकिन शरीर कुटिल है, गात झुका हुआ है, कमर पीठ पर कुबड़ है और वह झुक करके चलती है। तो भगवान ने सोचा कि जब विधाता ब्रह्मा इतना सुंदर मुख बनाया है तो शरीर इतना क्यों कुटिल बनाया, कुरूप बनाया, यह सोच करके भगवान को हंसी आ रही थी कि देखो विधाता का चातुर्य। गात्रम तो कुटिला करती, शरीर कुटिल था, टेढ़ा था और मुख बहुत सुंदर था, और मुख ही केवल सुंदर नहीं था, वास्तव में उसका सारा शरीर और जो था बहुत ही सुंदर था, केवल पीठ पर कुबड़ थी और झुक कर चलती थी। तो भगवान को इस बात से हंसी आई कि यह विधाता की रचना देखो कि शरीर इतना सुंदर लेकिन गात्र कुटिल बनाते। तो भगवान को हंसी आई और एक हंसी अभी आई कि भगवान ने सोचा कि गोपियां कहेंगी कि हम लोगों को छोड़कर आप मथुरा में गए और वही सबसे सुंदरी आपको पसंद पड़ गई, यदि वे हमसे पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा। तो ये सोच करके भगवान को हंसी आ रही है, हास्य ही भगवान का एक उत्तर और हंसने का कारण बता रहे हैं। अहो विचित्रा समयानुसारिता अधोक्षजो विस्मयतो जहास्ति सदा महानंद रस प्रदस्यन ममापि पाटिर रसार्थ नोदिता अहो विचित्रा समयानुसारिता इत्यध्यक्ष इति अधोक्षजो विस्मयतो जहास्ति। भगवान ने सोचा कि सबको जगत में महा आनंद रस देने वाला मैं हूं, मैं ही सबको सब प्रकार का रस देता हूं, सुख देता हूं, लेकिन आज देखो मुझे चंदन रस मांगना पड़ रहा है, याचना करनी पड़ रही। जो सबको सब रस देते हैं वही भगवान आज चंदन रस मांगने के लिए तैयार। तो भगवान को इस बात पर हंसी आ रही है कि अहो विचित्रा समयानुसारिता, समय बहुत बलवान है, समय के अनुसार मनुष्य को कार्य करना पड़ता है। तो मैं सबको सब कुछ देता हूं लेकिन आज मुझे मांगना पड़ रहा है। भगवान अब चंदन रस मांगेंगे, अंग विलेप मांगेंगे। तो अहो विचित्रा समयानुसारिता, समय के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। तो सबको सब कुछ देने वाला व्यक्ति आज मांगने के लिए तैयार हो रहा है। तो भगवान को इस बात पर हंसी आ रही है। दूसरा हंसी का कारण बता रहे हैं, या स्त्री सहास परिहासमपि प्रकामं श्रुत्वा बचो न कुपिता हृदये यदि स्यात् वस्या भवत् प्रचिरमध्वनिषेति कृष्णः तन्निर्णयाय किमुन्ताम बदत् तथैव। यह सिद्धांत है कि किसी स्त्री से कोई हास्यपूर्वक हंसी पूर्वक परिहास करे, मजाक करे, और फिर भी वह स्त्री कुपित न हो, क्रोधित न हो, तो अवश्य वश में हो जाती है। तो भगवान शायद यह निर्णय करने के लिए कि यह मेरे वश में होगी कि नहीं, इसलिए हंसे, देखना चाहते थे। मजाक करके हंसी पूर्वक देखना चाहते थे कि यह मेरे वश में हो सकती है कि नहीं। तो निर्णय आया कि मुदत तथैव, यह निर्णय करने के लिए क्या भगवान इस तरह से बोले उससे और हंसी की। बोलना होता तो डायरेक्ट कुछ पूछे होते, लेकिन हंस करके पूछे, एक परिहास कर रहे हैं, मजाक करते हुए पूछे। भगवान ने सोचा है कि अगर ऐसा करने से कुपित नहीं होगी तो ये मेरे बस में हो जाएगी। ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की लोकोत्तर लीला है, भगवान ने लोक वेद दोनों से परे हैं, स्वच्छंद खेल रहे हैं, कोई दूसरा मनुष्य उनकी लीलाओं का अनुकरण नहीं कर सकता है। नहीं तो वहीं पर अपने भाई, बड़े भाई बलराम जी हैं और सब हैं और जाकर के स्त्री से बात करने लगे। अद्भुत भगवान की लीलाएं, तो ये सब भगवान के हंसने के कारण। भगवान उससे कहे, उसके पास पहुंच करके कहे, सुखदेव गोस्वामी के वर्णन के अनुसार हम लोगों को कृष्ण का और शैलेंद्री का ध्यान करना चाहिए, इसी को चिंतन कहते हैं। कुब्जा किस तरह से कैसे हाथ में बर्तन लेकर के आ रही है, चंदन रस अंगराग लेकर आ रही है, और उसका स्वरूप कैसा है, भगवान उसको देखकर हंसे और उसके सामने आकर के कहने लगे। भगवान कहते हैं, का त्वं वरुर्वे तदुहानुलेपनं कस्यांगने वा कथय स्वसाधुनः देह्यावयोरंग बिलेपमुत्तमं श्रेयस्ततस्ते न चिराद् भविष्यति। हे वरुरु, हे श्रेष्ठ उरुवाली। वरुरु कहते हैं जिस स्त्री का शरीर बहुत ही सुंदर हो उसको वरोरु कहो। केवल कुब्जा के पीठ पर कुबर था, बाकी वास्तव में उसका शरीर बहुत सुंदर था। हे सुंदर उरुवाली, ये संबोधन भगवान ने किया। और दूसरा संबोधन किया अंगने। अंगना का अर्थ होता है हमारे अंग के योग्य, इस प्रकार संस्कृत में अर्थ अंगना, रमणीया, बहुत ही सुंदरी स्त्री हो। और वास्तव में पति ही किसी को कह सकता है अंगना, और भगवान उसको ऐसे कोई जान पहचान नहीं, रास्ता चलने वाली स्त्री है और जाकर उसको कह रहे हैं हे सुंदर जांघ वाली, हे सुंदर सुंदरी का त्वम। तो भगवान ये संबोधन करेंगे कि हे सुंदरी और हे प्रिय, तुम कौन हो, तुम का अर्थ है तुम कौन हो, तुम देवी हो या मानवी हो, क्या हो, किस जाति की हो, भगवान इस तरह से पूछ रहे हैं। तुम का, तुम कौन हो। और दूसरा प्रश्न किए, कस्य अनुलेपनम, ये जो तुम अनुलेप ले जा रही हो, अंगराग ले जा रही हो, पेस्ट ले जा रही हो, ये किसके लिए ले जा रही हो, तुम कौन हो और यह अंगराग किसके लिए ले जा रही हो, कथयस्व साधुना, हम लोगों से इसका सच्चा सच्चा वर्णन करो और पूरा पूरा है। तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है, तुम्हारा आइडेंटिटी क्या है, और तुम ये अंगराग किसके लिए ले जा रही हो। ये कोई पूछने की बात है, एक लड़का जाकर के युवती स्त्री से इस तरह से पूछ रहा है, लेकिन भगवान है, सावधान रहना चाहिए। लीला में कथयस्व साधना, सभी बातें ठीक से और विस्तार से प्रेम से हमें बताओ। ये तो प्रश्न किए, अब याचना कर रहे हैं। देह्यावयो अंग बिलेपमुत्तमम, आवयो हो, वहीं पर श्री बलराम जी खड़े हैं, साथ साथ चल रहे हैं, तो कहते हैं भगवान आवयो हो, हम दोनों को उत्तमम अंग बिलेपम देही, हम दोनों भाइयों को यह उत्तम अंगराग दो। मतलब हम चंदन लगाना चाहते हैं अपने देह में, नाभि से ऊपर पहले के लोग चंदन लगाते थे शरीर में, बहुत कोट पैंट स्वेटर नहीं पहनते थे लोग, एक दुपट्टा डाले घूम रहे हैं तो उसमें वे चंदन लगाते थे। तो भगवान ने कहा कि हम दोनों भाइयों को उत्तम श्रेणी का बहुत अच्छा अंगराग दो, और पीसना नहीं था, वो पीस करके बना करके ले जा रही थी। तो इसी पर भगवान ने पूछा कि किसके लिए ले जा रही है। सर्वज्ञ भगवान को सब कुछ पता है कि वो कंस के लिए ले जा रही है और कंस की दासी है, उसका परिचय यही था। कंस की दासी थी, कंस की सेवा में लगी हुई थी, कंस के लिए अंगराग ले जा रही। और भगवान इस तरह से पूछते, तो भगवान ने यह कहा, ये सोचा कि कोई भी वस्तु इस संसार में किसी से निःशुल्क नहीं लेना चाहिए, फ्री नहीं लेना चाहिए। और भगवान के पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन वो सोच लिए कि फ्री नहीं लेना चाहिए, इसीलिए भगवान हंसे और अपने मुख का रस दिए। मुख का दो रस है, एक तो मधुर वचन और दूसरी हंसी। तो मुख का जो रस है उसको मुख्य रस कहते हैं। मुख्य का अर्थ है मुख संबंधी और श्रेष्ठ मुख्य। तो भगवान ये मूल्य दे रहे हैं उसको। और उसने सोचा, कुब्जा सोच सकती थी कि इनको तो लक्ष्मी जी चाहती हैं, अनंत कोटि स्त्रियां इनके चरण कमल पर न्योछावर हैं, हमें क्यों चाहेंगे। इसीलिए अपनी प्रीति को प्रकट करते हुए भगवान हंस रहे थे, नहीं नहीं मैं तुम्हें पसंद करता हूं। इस प्रकार भगवान हंसे और उससे पूछे, कात्वम सुंदरी सुंदरो यमपिवा कस्यांग रागह कृते। हे सुंदरी, तुम कौन हो और यह सुंदर अंगराग किसके लिए तुम बनाती हो और ले जा रही हो। प्रश्नोत्तरादिति जब तदा खिलविदा अप्यज्ञानी अज्ञानितांगी कृता तेना स्पष्ट मभूत इदम जदबला विद्वांस मातर्ष अज्ञानम समुदेत तस्य यह सैद अंगरागे क्षण। एक प्रश्न उठता है कि भगवान जानते हैं जो कंस के लिए ले जा रही है, फिर भी क्यों पूछ रहे हैं, अज्ञानी की तरह क्यों पूछ रहे हैं। तो यहां पर बहुत ही सुंदर उत्प्रेक्षा की जा रही है कि भगवान जो ये पूछे कि हे सुंदरी, ये सुंदर अंगराग किसके लिए ले जा रही हो, तो इस प्रकार भगवान अपनी अज्ञानिता को प्रकट कर रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं है। तो क्यों ऐसा हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी स्त्री के अंग में आसक्त होगा, उसके अंग की शोभा पर आसक्त होगा, तो वह अज्ञानी हो ही जाएगा। जब भगवान उस स्त्री पर देखे, बस उनका ज्ञान समाप्त हुआ। भगवान का ज्ञान समाप्त नहीं हुआ है, भगवान जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन यहां दिखाया जा रहा है कि विद्वान को भी अबला आकृष्ट कर देती है। अबला जिसको बल ना हो, स्त्री को अबला कहते हैं, लेकिन अबला भी बड़े बड़े विद्वानों को भी आकर्षित कर लेती है। भगवान इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि कोई स्त्री पर देखेगा, खास करके अंगराग उसके सौंदर्य में आसक्ति करेगा, तो वह अज्ञानी हो ही जाएगा। शायद इस बात को प्रकट करने के लिए भगवान अपनी अज्ञानिता प्रकट कर रहे हैं, तुम कौन हो, किसके लिए अंगराग ले जा रही हो। यह उत्प्रेक्षा वास्तव में बहुत अच्छा है। तो भगवान के ये प्रश्न ध्यान में रखिएगा, तुम कौन हो, हे सुंदरी तुम कौन हो, और ये सुंदर अंगराग किसके लिए ले जा रही हो। और हम दोनों भाइयों को यह दे दो। अभी उसने उत्तर नहीं दिया, तब तक कहते हमको दे दो। अरे पता नहीं किसके लिए ले जा रही है, तो पहले उत्तर तो सुन लेना चाहिए ना। भक्त कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी चीज का लोलुप हो जाता है उसमें धीरज नहीं रहता और उसको ये भी ध्यान नहीं रहता है कि पहले क्या कहा है। जब पूछे कि किसके लिए ले जा रही हो तो अब नहीं मांगना चाहिए था, वो कुछ कहती तब मांगते, लेकिन कुछ कही नहीं कि कौन हो किसके लिए ले जा रही हो, और कहते हैं कि ये उत्तम अंगराग हम दोनों भाइयों को दे दो। ततः नचिरात्ते श्रेय भविष्यति, श्रेयस्ततस्ते नचिरात् भविष्यति। यदि तुम हम दोनों को अंगराग दोगी तो तुम्हारा अचिरात शीघ्र ही बहुत बड़ा हित होगा, बहुत बड़ा कल्याण होगा तुम्हारा। तो भगवान यह क्यों कह रहे हैं कि तुम्हारा हित होगा, अर्थात तुम अंगराग हमें दोगी तो ये मत समझो कि तुम घाटा में रहोगी, बहुत बड़ा लाभ होगा। हरिश्री जी कहते हैं कि न श्रद्धा वर्धते लोके सत्फल श्रवणम बिना, श्रेयस्ते न चिरात् भारी तूचे युक्त मधोक्षग। इस संसार में किसी कर्म के फल को सुने बिना उसमें श्रद्धा नहीं होती है, इसलिए लोग भागवत भी कहते हैं तो पहले भागवत श्रवण की महिमा सुना लेते हैं। आप किसी से दान मांग रहे हैं, कोई चीज मांग रहे हैं तो उस दान देने की महिमा को खूब कहते हैं लोगों से, ऐसा ये दोगे तो तुमको ये मिलेगा, तुमको ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो न श्रद्धा वर्धते लोके सत्फल श्रवणम बिना, किसी दान का या क्रिया का सुंदर फल श्रवण किए बिना उस क्रिया में उस दान देने में श्रद्धा नहीं होती है। इसीलिए भगवान श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए कहते हैं कि तुम हमें चंदन दोगे तो तुम्हारा अचिरात शीघ्र ही बहुत बड़ा कल्याण होगा। शायद भगवान को यह आशंका है कि ऐसे नहीं देगी तो कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बड़ा हित होगा, जो चंदन के बदले में बहुत ज्यादा दूंगा तुमको। ये सुनकर के दे सकता है, कोई भी आदमी कहीं भी मनी इन्वेस्ट करता है तो लाभ है देख करके, तो हमको लाभ होगा ये होगा। कंस के लिए वो चंदन ले जा रही थी और एक गली में घूमता हुआ लड़का मांग दे कि हमको दो, तो कैसे दे सकती थी। लेकिन भगवान उसके दान के फल को बहुत कह रहे हैं कि अचिरात ते श्रेय भविष्यति, शीघ्र ही तुम्हारा बहुत बड़ा कल्याण होगा। इसलिए भगवान इस तरह से कह रहे हैं। भगवान की बात को सुन करके कुब्जा क्या कहती है, सुखदेव गोस्वामी एक एक बात को बहुत गंभीर तौर से कहते जा रहे हैं। भगवान किस तरह खड़े हैं कुब्जा के सामने, कुब्जा रुक गई है, जो जा रहे थे वो रुक गई, बिल्कुल सामने भगवान खड़े और कहते हैं कि हमको दे दो, देने से तुम्हारा कल्याण होगा। आप जरा विचार कीजिए, जो व्यक्ति राजा की सेवा करता हो, राजा के लिए ले जा रहा है अंगराग, क्या कोई रास्ता चलते किसी व्यक्ति को दे देगा, जान मार देगा ना राजा। खुब्जा ने भगवान को चंदन दिया तो बहुत बड़ा साहस किया वास्तव में, बहुत बड़ा साहस। लेकिन भगवान के रूप माधुर्य हंसी और वचन में ऐसे उसका चित्त मोहित हो गया कि उसे ये परवाह ही नहीं रहा, ध्यान ही नहीं रहा कि कंस कौन है और क्या करेगा। भगवान इस तरह से बोलते हैं, हंसते हैं। तो जब भगवान ने इस तरह से मांगा तब कुब्जा कहती है, सैरंद्री उवाच, दास्यस्म्यहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामायनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपते रति प्रियं विना युवां कोन्यतमस्तदर्हति। सैरंद्री उवाच, सैरंद्री ने कहा, दासी अस्मि अहम्, अहम दासी अस्मि, मैं दासी हूं। संबंध नहीं बता रहे किसकी दासी हूं, ये नहीं बता रही है, दासी हूं। और भगवान ने सुंदरी कहा था तो यह अभी उनको सुंदर कह रही है, इसका अर्थ है कि दोनों का मन मिल गया तो निश्चित हो गया। भगवान ने कहा हे सुंदरी तो ये कहती है हे सुंदर। इसी तरह से आकर्षण पहले चालू होता है। दासी अस्मि अहम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा हिनलेप कर्मणि, मैं दासी हूं और अनुलेप कर्मणि अंगराग बनाने के विषय में कंस सम्मता, राजा कंस हमको बहुत मानते हैं, हमारे अंगराग को बहुत पसंद करते हैं, ऐसे सिद्ध हो गया कि उनके लिए ले जा रही हूं। ये नहीं कही, उन्होंने कही कि कंस सम्मता अनुलेप कर्मणि, अनुलेप कर्म में अंगराग बनाने में राजा कंस बहुत पसंद करते हैं। यह नियुक्त की गई थी, राजाओं के बहुत से सेवक होते हैं, उनका केश झाड़ने वाला अलग सेवक होता है, मुकुट पहनाने वाला अलग होता है, पगड़ी बांधने वाला ऐसे, उनको मोजा पहनाने वाला, जूता पहनाने वाला, कुर्ता पहनाने वाला, नख काटने वाला अलग बार्बर होता है, केश काटने वाला अलग होता है। राजा लोग इतने फैशन में रहते हैं, कई सेवक रहते हैं। जैसे हमने सुना है लखनऊ के नवाब, एक बार अंग्रेज लखनऊ के नवाब को पकड़ने गए तो उसके मंत्री वगैरह सब भाग गए, लेकिन वो कभी जीवन में अपने से जूता नहीं पहना था, तो बोलने लगा जूता पहनाओ जूता पहनाओ जूता, कोई नहीं पहनाया, पकड़ लिया अंग्रेजों ने उसको, अपने से जूता पहना ही नहीं था तो ये तो साधारण नवाब की ये बात है। हमारे यहाँ कोई लड़का घर में काम नहीं करता है तो उसके घर के लोग कहते हैं लखनऊ का नवाब बन गए हो ऐसे काम नहीं कर रहे तो वो तो नवाबों का भी नवाब था, बाप था कंस, बहुत बड़ा व्यक्ति था। शरण जी कहते हैं कि हमारे पिसे हुए अंगराग को कंस बहुत पसंद करते हैं। मदभावितम भोजपते रति प्रियम, मेरे द्वारा तैयार किया हुआ अंगराग भोजपति को अति प्रिय है। भोजपति मतलब कंस, बहुत बड़ी बात कुब्जा कह रही है कि मैं दासी हूं और कंस मुझे बहुत पसंद करते हैं इस अनुलेप करने अंगराग के निर्माण में, और मेरे द्वारा तैयार किया हुआ अंगराग उन्हें अति प्रिय है। मद भावितम भोजपतेर अति प्रियम, मेरे द्वारा तैयार किया हुआ अंगराग उनको अति प्रिय है, बहुत पसंद करते हैं। तब भगवान ने कहा कि तो क्या उसी के लिए ले जाएगी क्या, कंस को ही दोगी अंगराग? तो वो कहती है नहीं, बिना युवाम कौन्य तमस्त दरहती, आप दोनों को छोड़ करके इस अंगराग का कोई दूसरा पात्र नहीं। अरे बाप, इतना त्याग किया, कुब्जा का प्रेम देखिए, जीवन और मरण की चिंता उसे नहीं रही, स्पष्ट कहती है और सभी समाज में भरा हुआ है समाज, और कहती है कि यद्यपि कंस को मेरा अंगराग बहुत प्रिय है लेकिन यह अंगराग आज मैं समझी कि केवल आपके योग्य है, कंस के योग्य नहीं है। प्रकारांतर से उसने कह दिया और मैं दूंगी आपको, इस प्रकार से कुब्जा ने समर्पण कर दिया। भगवान का वास्तव में यह प्रभाव है, दासी अस्मिति। श्री हरिश्वर जी कहते हैं कि जस्या दास्य महर निशम विधि शिव स्वर्गाधिपाद्या सुरा, जिनकी दासता जिनकी सेवा ब्रह्मा शिव और स्वर्ग के राजा इंद्र आदि निरंतर करते रहते हैं, कुर्वं तद्भुत वैभवाप्ति मनसो दैत्या स दैत्या जवम, यहां तक देवता और दैत्य अभी सभी भगवान की आराधना करते हैं और सापि श्री रलमार्जनम विदति जस्यां हृदासी सती। इस संसार में लक्ष्मी की सेवा सब लोग करते रहते हैं। ब्रह्मा जी लक्ष्मी की सेवा करते हैं, कृपा चाहते हैं, शिव जी चाहते हैं, इंद्र चाहते हैं, दैत्य सब चाहते हैं। वही श्री, वही लक्ष्मी जी जिनके चरण कमलों की रात दिन सेवा करती रहती हैं, उस जगदीश की, प्रभु की मैं क्यों नहीं दासी हूं, खूबजा कहती है। तो वो नहीं पहचानती है कि भगवान है। हरीश्वरी जी अपने ओर से भाव कहते हैं कि सभी लोग लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, लक्ष्मी की सेवा करते हैं और लक्ष्मी जी भगवान की चरण दासी है, तो उसकी उदासी क्यों ना हो जाए, भगवान की दासी क्यों नहीं बन जाए। तो फिर उसने कहा कि मेरा नाम है त्रिवक्रा, त्रिवक्र नामा। तो उसके कहने का आशय था कि हे प्रियतम, हे सुंदर, मेरा नाम भर त्रिवक्रा है, लेकिन वास्तव में मैं बकरा नहीं हूं। बकर का अर्थ होता है टेढ़ा, कुटिल। मेरा नाम भर बकर है, उसको इस तरह से व्यक्त कर रहे। गात्रम विधातृकृतमे तदिति त्रिवक्रम। विधाता ने हमारे गात्र को, शरीर को तीन जगह कुटिल बना दिया, टेढ़ा बना दिया, इसलिए मैं त्रिवक्रा कही जाती हूं। त्रिवक्रा नामापि में तदनुसारी भूमि प्रसिद्ध हम, इसीलिए नाम भी वही हो गया है। गात्र कुटिल है, टेढ़ा है, और नाम भी लोगों ने ऐसा ही रख दिया है। लेकिन हे सुंदर, मेरा चित्त बिल्कुल सरल, मेरा चित्त कठोर नहीं है, कुटिल नहीं है, बिल्कुल सरल है। चित्तम तो वक्र में है चक्र धरे तेरे ही प्रायंत रंग सरला सुदृश भवंती। वो नामा करे त्रिवक्र नामा, मेरा नाम भर त्रिवक्रा है, लेकिन मैं बिल्कुल सरल हृदय की हूं। प्रायः स्त्रियां सरल हृदय की होती हैं, कुब्जा कह रही है। तो मैं भीतर से कुटिल नहीं हूं, मैं बिल्कुल सरल हूं। सरल का अर्थ सीधी साधी हूं, और मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन मेरा नाम त्रिवक्रा है। तो बिना नाम बताए परिचय पूरा नहीं होता, इसलिए उसने नाम बताया। फिर कहती है, कौटिल्य मंत्र गतम में वही पुरा से, पूर्व जन्म में जब मैं मंथरा थी तो मेरे भीतर कुटिलता थी, शरीर ठीक था, वो शरीर ठीक था, बाहर से ठीक थी, लेकिन चित्त कुटिल था, कपटी था। लेकिन इस जन्म में शरीर कुटिल है, चित्त ठीक है बिल्कुल, ऐसा कहती है। और अस्मिस्तु वर्षमणि बहिष्कृतमेव नान्तः। इस जन्म में शरीर भर कुटिल है, मन बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार दो जन्म की बातों को जान करके वो कह रहे कि नामैव वक्रमिति सा कथयत किमीशम। क्या कुब्जा ने इसी भाव को व्यक्त करने के लिए कहा कि मेरा नाम त्रिवक्रा है, नाम से त्रिवक्रा हूं, वास्तव में मैं सीधे साधे। और उसने सुंदर कहा तो कहा कि मैं त्रिवक्रा हूं और आप भी त्रिवक्र हैं। वक्र का अर्थ टेढ़ा। श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो तीन जगह से टेढ़े हो जाते हैं, पैर इधर उधर करते हैं, बाएं पैर को दाएं, दाएं पैर को दाएं, इधर करते हैं बाएं, और कटी से टेढ़े होते हैं, ग्रीवा टेढ़ी हो जाती है, उनको त्रिभंग कहते हैं, तीन जगह से टेढ़ा है। तो कुब्जा कहते हैं कि आप भी त्रिभंग हैं और मैं भी त्रिवक्रा हूं, तो हमारा और आपका संग विधाता के द्वारा रचा हुआ है। भगवान ने भी सोचा कि ठीक ही है, मैं भी त्रिभंग हूं और ये भी त्रिवक्र है, इसलिए वो नाम बता रही है। दासी अस्मी, इस पर क्या भाव है, त्वद रिपोर्ट नैव दास्यस्मि किंतु वंश क्रमागता। कंस आपका शत्रु है मैं जानती हूं, लेकिन मैं कंस की दासी नहीं हूं, किंतु वंश क्रमागता, मैं उसके वंश में जितने लोग हैं उनकी दासी बनी हूं, तो क्रमागत दासी हूं, मतलब मेरी माँ दासी रही होगी, मेरे पिता दासी रहे, दास रहे होंगे, इस कारण से मैं भी दासी बनी हूं, लेकिन मैं उसकी दासी नहीं हूं। तो वंश परंपरा में होने से दासी हूं, पर रियल हृदय से आपकी दासी। ये देखिए समर्पण, कंस की दासी नहीं, मैं आपकी दासी हूं, दासी असली अहम, हे सुंदर मैं आपकी दासी। इस तरह से अपने को भगवान में अर्पित कर देना बहुत बड़ी चेतना है, बहुत बड़ी भक्ति। तो त्वद रिपोह नैव दास्यस्मि किंतु वंश क्रमागता, ना तो मानिए तुझे दासी भोजपते रहो, और हे प्रिय हे सुंदर, यदि मैं अपने को भोजपति का दासी कहूं तो इससे आप हमारा तिरस्कार मत कीजिए, क्योंकि वास्तव में मैं कंस की दासी नहीं हूं, आपकी दासी। तो भगवान ये कह सकते थे मेरी दासी क्या हो, रात दिन सेवा करती हो कंस की और कहती हूं कि दासी आपकी। तो कहते हैं कि वंश परंपरा के कारण अब सेवा करनी पड़ती है, लेकिन दासी आपकी है, पहले नहीं थी, आज से आपकी दासी बन रही है, हो गई कंस की सेवा।